सत्र जिनका था वो अंतिम सत्र में आके पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी का हम बारंबार स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आप जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे और जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए 1969 में, उसी वर्ष आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, लेकिन उसके बाद तो आपने पढ़ाई जारी रखी और 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक की एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पास की, तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ में आपने भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी, फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सबछोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। एक वर्दी हैंड की जरूरत थी, एक लायक बाबा को हैंड्स चाहिए थे, तो बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। करीब 17-18 वर्षों तक आपने वहां अपनी सेवाएं दी। तब तक फिर शांतिवन में भी सेवाओं का विस्तार बहुत हो गया। तो फिर 2010-11 में दीदी शांतिवन में रहने लगे और वहीं से अब देश विदेश की सेवाएं देख रहे हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, SML के भी प्रशिक्षिका हैं और ऐसे इंटेंस भर्ती के जो प्रोग्राम चलते हैं उनकी भी प्रशिक्षिका हैं। और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और जैसा आपको हमने टॉपिक दिया है, आप सचमुच उस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो सचमुच दीदी अपने अनुभव से आज हमारे सामने शेयर करेंगे कि कैसे योग बल से हमें कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। दीदी को जब भी हमें क्लास देनी होती है भट्टी में, हर वीक एक नया भट्टी का ग्रुप होता है, तो सबसे पहले हम आपको पूछते हैं, क्योंकि इनकी डेट होती है डायलिसिस की और उसके हिसाब से हमें पहले इनको पूछ के बाद में दूसरे स्पीकर को पूछते हैं। तो हमने इनके लिए ये विषय रखा कि अनुभव से हमें इन बातों से अवगत कराएंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। भट्टी में आनंद आ रहा है? हाँ, बाबा के घर में, बाबा की याद में आनंद अनुभव होना चाहिए। जिस बात में आनंद आएगा वो हम लंबा समय कर सकते हैं। अगर हमें उसमें खुशी नहीं, मजा नहीं आता, तो लंबा समय नहीं कर सकते। और भगवान की याद के आनंद का ही गायन है। किस रूप में गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन है? हम बाबा के बच्चे, ईश्वर की याद में जो आनंद आता है, देहभान से न्यारे होने में, इंद्रियों के रसों से न्यारे होने में आनंद आता है। सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ आनंद सुख का अनुभव, क्योंकि योग का पहला अभ्यास है देहभान से न्यारा होकर आत्मभान में स्थित होना, है ना। बाबा की याद जब हम याद में बैठते हैं तो पहला अभ्यास डिटैचमेंट, न्यारा, अपने आप को देह भान से, दुनिया से, जो भी हमारे जीवन का विस्तार है उससे हम अपने आप को न्यारा करते हैं। बाबा कहते हैं कि एक कछुए में भी अकल है। जब कर्म कार्य करना है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, विस्तार में जाता है, और कार्य पूरा होते ही समेट कर साइलेंस हो जाता है। तो जब आवश्यक है तो हमें मन और बुद्धि विस्तार में ले जाना है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है। हरेक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपने अपने कार्य हैं। तो जब आवश्यक है तो हम उसमें बुद्धि लगाएं, जिम्मेवारी से कार्य करें, लेकिन कार्य पूरा हो जाए फिर बुद्धि को समेट कर स्वधर्म में स्थित हो, बाबा की याद में बैठ जाए, अनावश्यक बुद्धि नहीं चला, परंतु अपने अपने आप को देखना है हा? कि अनावश्यक बातों में बुद्धि कितनी जाती है। कल कुछ हुआ, आपस में कुछ हुआ, दिन पूरा हो गया, दिन बदल गया, फिर भी वो बातें हम कई बार सोचते रहते हैं। बाबा दादियां हमेशा बताती थी कि दिन पूरा हो गया, बात पूरी हो गई, दिन बदल गया, आज भी उनका असर क्यों है? बात हो गई, खत्म, पास्ट इज पास्ट, सबक सीख लेना है और आगे बढ़ना है। विस्तार से सार में जाना है। शरीर विस्तार है, आत्मा सार है। डिटैच होना बहुत जरूरी है। कई बार हम योग में बैठते हैं, घंटा लाल लाइट में भी बैठे, पर वो बातें छोड़ते नहीं। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, न्यारा होना। अगर हम योग में डिटैच होकर अपने आप को समेटते नहीं हैं, तो एक घंटा अभ्यास किया, लाल से सफेद लाइट हो गई, पर रिफ्रेश नहीं। रिफ्रेश नहीं होंगे क्योंकि हम डिटैच हुए ही नहीं, हम उड़े ही नहीं। योग में बैठते हुए भी हम तो कारोबार में ही घूमते रहे, घर की बातें, धंधे की बातें, तो अपने आप को हमें समझाना है कि ये समय बाबा की याद का समय। ठीक है, हमें ही नौकरी करनी है, हमें ही धंधा संभालना है, परिवार संभालना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही संभालनी, परंतु कुछ समय उससे अलग होकर सोचना है, याद करना है। तो हमें कैसे सब कुछ करना है वो भी समझ में आ जाए। फिर हम बुद्धि से परम धाम जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। अब तक तो हम इस दुनिया की और इस जन्म की बातें सोचते रहे, अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया, असली घर का ज्ञान दिया। वरना हम हमेशा दुनिया की बातें ही सोचते रहते, है ना? तो इस दुनिया से ऊपर उठना, इस भौतिक दैहिक लौकिक जगत से ऊपर उठना, तो हमारा चिंतन साधारण नहीं रहेगा, श्रेष्ठ बने। और फिर असली घर में जाकर बाबा के सामने शांति से बैठते हैं। कई कहते हैं कि हम 2-3 मिनट में ही नीचे आ जाते हैं। बाबा के सामने भी शांति से नहीं बैठ पाते, क्योंकि बुद्धि में सारी दुनिया की पंचायत भरी हुई है। शांत स्वरूप होकर बैठेंगे तो आनंद स्वरूप होकर आएंगे, बाबा से रिफ्रेश हो जाएंगे। ये अभ्यास हमारा क्वालिटी अभ्यास होना चाहिए। एक है क्वांटिटी ऑफ योग, 2 घंटा 4 घंटा किया पर डिटैच नहीं हुए, ऊपर उठे नहीं, बाबा से रिफ्रेश नहीं हुए, इसलिए लाल लाइट से सफेद लाइट होते ही हम हलचल में आ जाते, क्योंकि हम ऊपर गए ही नहीं। क्वालिटी ऑफ योग भी चाहिए। बाबा से प्यार है पर योग अभ्यास करते ही नहीं। मैं कहूं मुझे आपसे बहुत प्यार है पर मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है, तो आप मानेंगे या मेरे प्यार को मानेंगे? टाइम देना होता है ना, तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए। बाबा के लिए समय निकालना है, अभी भी 2 मिनट बस बाबा के कमरे में बैठ के फिर चले जाते, नहीं। प्यार है तो हमें बाबा से बात करनी है। और क्वालिटी ऑफ योग कि मैं आपके पास बैठती हूं पर घड़ी घड़ी मेरा ध्यान दूसरी बातों में जाता है, तो बात करने वाला कहेगा कि भाई ध्यान से सुनो जो मैं बात करता हूं, आपकी बुद्धि तो इधर उधर जा रही। अभी हम बैठे हैं तो हम आपस में ध्यान देंगे, तो वो है क्वांटिटी ऑफ योग। दोनों चाहिए, अपने योग अभ्यास को खुद चेक करो। मेरा योग मेरी तपस्या कैसी, और आज का ये अभी का जो टॉपिक है योग बल से कर्म भोग पर विजय, सभी के सामने कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई दवाई हम सब खाते हैं, हिसाब किताब है। अच्छे कर्म के अच्छे फल भी जीवन में हम भोगते हैं, और गलत कर्मों के जो हिसाब बनते हैं तो वो भी बीमारियां, विघ्न, मुसीबतें, तकलीफें इस रूप में हम भोगते हैं। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकते, क्योंकि है ही कर्म क्षेत्र। जैसे ही शरीर रूपी ऑर्गन्स मिलते हैं हम कर्म करते हैं। कहीं कहते हैं ना, हम कर्म सन्यासी है, हम सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं, कर्म सन्यासी तो ऐसे ही करते हैं। हम कर्म सन्यासी है ऐसे वो कहते हैं, परंतु कर्म तो होते ही है। व्यक्ति जंगल में चला गया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी धंधा छोड़ दिया, पर आंखों से देखना, बोलना, श्वास लेना, सोचना, ये भी तो कर्म है। इसलिए और कर्म ही हमारे सुख दुख का आधार है। एक कॉमन कर्म फिलोसॉफी हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल कर्ता को ही भोगना। भारतवासी सभी इस ज्ञान को जानते हैं। इसलिए अगर हमें सदा काल का सुख पाना है तो क्या करना होगा? हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना होगा, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। पर 63 जन्म जब ज्ञान नहीं होता है, योग कर्म से अलग हो जाता है, है ना? योग कर्म से अलग हो गया, इसलिए कर्म विकर्म बन गए, दुख शांति के फल खाने लगे हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को पूरा कर्म फिलॉसफी का ज्ञान दिया। अब हम लक्ष्य रखते हैं कि मुझे अब कोई व्यर्थ कर्म नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है, मुझे नए हिसाब नहीं बनाने, मुझे सत कर्म हम करना है। अपनी मुझ आत्मा की, मुझे अपनी शुद्ध सत्य स्थिति में स्थित होकर, बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करना। दूसरी बात, कर्म जो हम करते हैं उनके अच्छे या बुरे फल हमें ही भुगतने होते। बाबा भी माफ नहीं कर सकते। अक्सर जब भी कोई दुख आता है अपने आप को सुधारने के बजाय इंसान भगवान को कहने लगता है मुझे माफ करो छुड़ाओ, परंतु जो किया वो हिसाब हमें ही भुगतना है। हाँ, भगवान सत्कर्म कैसे करें वो ज्ञान देता है, पाप कर्म कैसे भस्म हो वो योग सिखाता है, पर करना तो हमें ही होगा वो पुरुषार्थ। एक किसान जमीन में बीज बोता है, खाद डालता है, धूप पानी मिले वो ध्यान देता है, पर उस बीज से अंकुरित होना वो किसका काम है? बीज का है। बाबा भी हमारी बुद्धि रूपी धरणी में ज्ञान के बीज डालता है, पर उस ज्ञान को जीवन में धारण करना, उस ज्ञान को गुणों में बदलना वो पुरुषार्थ किसको करना है? हमें ही करना है। वो हमारा पुरुषार्थ है। और जब उस ज्ञान के बीज को हम धारण करते हैं, हर परिस्थिति के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है ना, उस समय हम बाबा के ज्ञान को धारण करने की हिम्मत करते हैं तो अपने आप हमें गुण और शक्ति मिलते हैं। सिर्फ बाबा को नहीं कहना है बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा तो ऑलरेडी मदद में आए ही है ना, हर बात का सही ज्ञान वो हमें दे रहे हैं। तो समय परिस्थिति विघ्न अनुसार जो ज्ञान बाबा ने दिया है, श्रीमत बाबा ने दी है, मुझे उसको धारण करना है। वो एक हिम्मत का कदम उठाने से अपने आप और मदद बाबा की हमें मिल जाती है। देखो कहते हैं ना कि भाई कलयुग देखना है तो कहाँ दिखता है? हॉस्पिटलों में जाओ तो पता चले, जेल में जाओ तो पता चले, कोर्ट में जाओ तो पता चले, है ना? जहाँ कलयुग के नज़ारे दिखते हैं, क्योंकि बीमारियाँ, झगड़े, सजाएं दिखता है ना चारों ओर, क्या कलयुग है। तो हर व्यक्ति को कर्म भोग होते, छोटी मोटी बीमारी हर एक को आती, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने जीवन भर दवाई ही नहीं खाई, हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं मारे, पर इस जन्म के नहीं पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, बाबा कहते हैं ना 63 जन्मों का उधार है, तो 63 जन्मों के विकर्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों का हिसाब जमा कर, संगम युग में ये बहुत बड़ा समय है, कारोबार है कि 63 जन्मों का उधार चुका है। जब उधार चुकाते जाते हैं तो खुशी होती है ना कि भाई अब इतना नहीं रहा, सिर पर बहुत बोझा था, अब इतना नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बीमारी आती है तो दुखी नहीं होना है, खुश होना है कि अब हिसाब चुकता हो रहा है। बच्चे को बीमारी आती है, भुगतना तो बच्चे को ही है ना, पर अगर माँ बाप भाई बहन बीमारी के समय हमारे सहयोगी हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें मदद करते हैं दवा दुआ जो भी, तो हिसाब तो बच्चे को ही चुकाना है, पर आथत रहती है कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहे। इसलिए कहते हैं ना भाई कैसे हो, और प्रसंगों में ना जाओ पर कोई बीमार पड़ता है तो कैसे हो भाई, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये शुभ भावना के प्रेम भरे दो शब्द भी हम बोलते हैं तो बीमार व्यक्ति को हिम्मत रहती है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। कोरोना में बहुत लोग शरीर छोड़ दिए, इसका एक कारण ये भी था कि बीमारी में अकेले कर देते थे, वो अकेला हो जाने से और हिम्मत हार जाते। इसलिए बाबा को साथी रखना, मैं अकेला नहीं, बाबा मेरे साथ है। बाबा को साथी बनाने से हिम्मत रहती है, मैं अकेला नहीं, भल मेरे हिसाब किताब मुझे ही चुकता करना है, क्योंकि क्योंकि मैंने ही बनाए। पहले हम ये समझते थे कि इसके कारण मैं दुखी, यही मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, यही मुझे तंग करते हैं, हम दूसरों को दोषित समझते थे। पर अब हमारी बुद्धि में स्पष्ट है ना कि जो मेरे सामने परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, विघ्न आते हैं, समस्या आती है, वो मेरे ही हिसाब के, भल देखने में लगेगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये तंग कर रहा है, परंतु मुझे ही क्यों कर रहा है, मेरे हिसाब है कोई इनके साथ, सुख का कोई लेन देन का हिसाब है नहीं, दुख का कोई हिसाब बना हुआ है, इसलिए ये मेरे सामने आ रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि कोई भी बीमारी है, कर्म भोग है, तो तीन बातें बाबा ने बताई, दवा करो, शरीर के लिए दवाई चाहिए, दवा करो, जो हमारी कंडीशन है उस हिसाब से जो भी उपचार हम कर सकते हैं वो हम करें। ये भी नहीं कि हम इतना बीमारी के कॉन्शियस हो जाएं कि मुझे वो हॉस्पिटल में ले जाओ, ये हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे फलानी जगह ले जाओ। बाबा कहते हैं सोच सोच के छोटी बीमारी को भी बड़ा कर देते। शरीर की बीमारी आती है और व्यक्ति मन से भी बीमार हो जाता है, मन से बीमार नहीं होना है, मन सदा हमें मजबूत रखना है। अगर मन भी बीमार हो जाएगा तो छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगी। एक फुंसी होगी तो भी होगा कि अरे मुझे क्या हो गया, कैंसर तो नहीं, ये तो नहीं, ये है मन बीमार हो जाना। मन को बीमार नहीं करना, मन मजबूत है तो बड़ी बीमारी भी छोटी लगेगी। नेचर जो बन जाता है ना कईयों का, राय को पहाड़ कर देना। तो सिर्फ बातों के लिए हम ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, बातों के लिए तो करते ही हैं कि बात को बतंगड़ बना देते हैं या छोटी बात को भी बड़ा पहाड़ कर देते हैं। परंतु बीमारी के बारे में भी ऐसे करते हैं, मुझे ये तो नहीं होगा, मर तो नहीं जाऊंगी, क्या होगा, है ना, आगे आगे का बहुत सोचते हैं, कौन बच्चों को देखेगा, घर का क्या होगा। अरे भाई पहले अपने को तो ठीक करना है ना। हर बात को हल्का सामान्य बना देना है। जो ऐसी बातें आती है, जो हो सकता है वो दवा करेंगे। हम बाबा के बच्चे ज्ञान से अपने आप को ठीक करेंगे। मन को देखो, हम यहां हैं शरीर में हैं तो भी हम क्या करेंगे, अब बाबा को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और मान लो मेरा शरीर छूट भी गया तो मैं आत्मा जहां जाऊंगी वहां भी क्या करूंगी, हम ज्ञान योग के ही संस्कार ले जाएंगे तो हम जहां जाएंगे वहां भी हम ज्ञान योग ही करेंगे। तो हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, यहां रहे तो भी ज्ञान योग, जाएंगे तो भी ज्ञान योग। इस प्रकार अपने आप को डिटैच करते रहो और कुदरत का क्रम है, जो आया है सो जाएगा, आज नहीं कल। कोई किस विधि से जाएगा, कोई किस विधि से जाएगा, जाना तो है। आना और जाना सुखदाई बनाना चाहते हैं तो नए हिसाब नहीं बनाने। बाबा कहते हैं ना, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अच्छे ज्ञानी बने, अच्छे योगी बने, अच्छे सेवाधारी बने, बाबा के साथी और मददगार बने, तो जितना हम जमा करेंगे तो हमारी आना और जाने की जो क्रिया है वो सुखदायी रहेगी। दूसरा बाबा कहता है, दुआ करो, दवा करो और दुआ करो। हम ऐसी चलन चलें जो लोगों के दिल से दुआ निकले, आशीर्वाद हमें मिले। आपने समय पर हमें मदद की करके दिल से शुक्रिया करते हैं। दुआ कमाना है। और तीसरा, योग करो। योग से हिसाब चुकते होते हैं, मन ठीक रहता है, हिम्मत रहती है, तो योग करो। बाबा ने तो ये तीन चीजें हम बच्चों को सिखाई। तो कोई भी बीमारी आती है, जो बहन ने कहा कि मुझे, मैं 16 वर्ष की बाबा के घर में आई और 66 वर्ष की हुई बाबा के यज्ञ में, बहुत सुख मिला, बहुत सेवा अच्छी रीति की, योग अभ्यास भी बहुत अच्छा किया। अब इस वर्ष ये 2020 दिसंबर में अचानक, क्योंकि खुद के प्रति ध्यान ही नहीं दिया, अचानक क्यों कहे, पर बाबा सेवा पुरुषार्थ प्रति विशेष ध्यान दिया है। तो दोनों किडनी बीपी की दवाइयों से और इस प्रकार लगभग 40 साल से दवाई लेते तो वो सिकुड़ गए। इसलिए क्रिएटिनाइन बढ़ गया अचानक, तो बहुत कम काम करने लगी तो डायलिसिस पर जाना पड़ा। लेकिन मैंने इस बात का कोई प्रभाव अपनी स्थिति पर नहीं लिया, क्योंकि बाबा का ज्ञान है कि चलो भाई कोई ना कोई हिसाब तो आना ही है, शरीर के अंदर से वापस जाने का कोई तो कारण बनेगा ना। किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को कुछ होता है, कोई तो कारण बनना ही है, तो बना। तो दुखी नहीं हो गए और डायलिसिस पर आ गए। पर लक्ष्य यही है कि बाबा जीना है तो मुझे सेवा करनी, जीना है तो पुरुषार्थ करना है और सेवा करनी। इसलिए उपचार भी चलता रहता है और बाबा का कार्य भी होता रहता है। अवस्था बिगाड़ने से तो कोई फायदा ही नहीं है। अवस्था अच्छी है, ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, तो शरीर के हिसाब किताब भी हिम्मत से हम चुका सकते। तो योग बल क्या चीज है? योग हम करते हैं, पर योग से आत्म स्थिति शक्तिशाली बने, सिर्फ स्मृति नहीं, स्थिति मेरी, मैं ज्ञान का स्वरूप बनूं, वो है योग बल। स्मृति और स्थिति की शक्ति, वो है योग। सदा यथार्थ स्मृति बाबा ने जो बताई है, रोज मुरली में बाबा बता रहे थे तुम्हें ये नशा होना चाहिए, ये स्मृति रखनी है। तो जितना ज्ञान युक्त मनोस्थिति है और योगिक अवस्था है, तो हमें कोई नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे, मन कमजोर भी नहीं होगा, है ना? और आप हिसाब किताब चुकाते हुए अपनी अवस्था अच्छी रखेंगे और हिसाब भी चुकत होता जाएगा। एक है जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई बातें डिफिकल्ट लगती हैं, छोटी मोटे पेपर आते हैं, तो ये भी पढ़ाई के समय है ना, कई छोटे मोटे विघ्न हम सबके जीवन में आते हैं, तो वो पढ़ाई करने समय आने वाले विघ्न है। परंतु रियल एग्जाम उसको मुझे पास करना है ना। एग्जाम के समय पता चलता है कि पढ़ाई कैसी की है ना? तो ये अंत समय है, महापरिवर्तन का समय, पूरे चक्र के कर्मों का जो माइनस प्लस का हिसाब बना वो एकदम लास्ट क्लियर करने का। जैसे बैंक में सारा वर्ष आप जमा भी करते हैं और निकालते भी, वो माइनस प्लस होते होते हिसाब बैक फॉरवर्ड होता रहता। पर मार्च एंड में क्या होता है? फाइनल क्लियरेंस। तो संगम युग का समय अभी जो कल्प के अंत का समय है वो फाइनल क्लियरेंस का, पूरा हिसाब क्लियर करके जाना। हर जन्म के बाद तो हिसाब बैक फॉरवर्ड होता रहा, पर अब क्लियर। तो बाबा कहते हैं या योग बल से चुकाओ और नहीं तो सजा के रूप में। अच्छा है यहां ही चुक तो हो जाए, बाबा के सामने हिसाब चुकाना न पड़े। हमने बाबा के नाम पर कितनी सुख और सुविधाएं ली है। बाबा के सामने हम सजा खाएं वो तो शोभा नहीं देता है। तो अच्छा है कि छोटी मोटी जो भी बीमारियां आती है वो हिसाब हम यहां ही चुप्त करें। उस समय मन को ढीला नहीं कर रहे। कोरोना में घबरा गए थे? हाँ, सच बताओ। अंदर अंदर डर लगता, हाँ क्या होगा। ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं, पक्के और सच्चे बच्चे हैं, तो डरने की बात नहीं। हाँ, सावधानियां हम रखेंगे। हम जीना चाहते हैं क्योंकि हम योग करना चाहते हैं, हम भगवान के साथ रहना चाहते हैं, हम भगवान का कार्य करना चाहते हैं। तो घबरा नहीं जाना है, चिंतित नहीं हो जाना है। दुनिया में देखो, ज्ञान नहीं था तो बेचारे कितने घबरा गए, क्योंकि उनको तो शांति से बैठने का अभ्यास ही नहीं। हाँ, कुछ भी काम नहीं होगा, फ्री हैं तो कहेंगे मैं चक्कर मार के आता हूं। उनको घर में शांति से बैठने का अभ्यास ही नहीं। हाँ, कोई काम ना हो तो क्या करना है वो जानते ही नहीं। हाँ, हमें तो कामकाज पूरा हो जाए तो हमें तो अच्छा लगता है, चलो बाबा की मुरली पढ़ें, योग करें, किसी को ज्ञान दे, है ना। उन लोगों को तो अभ्यास ही नहीं है कि फ्री हो तो क्या करें। एक लेडी डॉक्टर थी, वो प्रेग्नेंट हुई तो एज अ डॉक्टर उसने सब मन में क्लियर कर दिया कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा अगर उसको जुकाम होगा तो मैं ये दवा दूंगी, बुखार होगा तो ये दवा दूंगी, पेट का प्रॉब्लम होगा, सब अपनी बुद्धि में स्पष्ट। अब बच्चा तो अच्छा पैदा हुआ, तंदुरुस्त पैदा हुआ, अब उसका तो ज्ञान ही नहीं कि तंदुरुस्त बच्चे को मुझे क्या करना है, कैसे उनको और आगे स्वस्थ बनाना है ना। हम बच्चों को वो ज्ञान है कि कोई ना हो तो कैसे याद में रहना है, कोई बीमारी हो तो क्या करना है, बाबा को याद करना है, अपने आप को और योगी कैसे बनाना है, समय कैसे मुझे सफल। हमें तो ये ज्ञान है ना, बाबा ने हमें ये सिखाया कि और हम तंदुरुस्त स्वस्थ कैसे बने, अपना टाइम कैसे सफल करें। तो कोरोना में हरेक ने अपना निरीक्षण किया होगा, वैसे तो भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्लास पूरा होता है सब भागते हैं, नौकरी पर जाना है, घर जाना है, ये काम है ना। ड्रामा ने अचानक इतना टाइम दे दिया, अब क्या करना है। अचानक इतना टाइम दे दिया। बाबा तो हमेशा कहते हैं सेवा करो, पुरुषार्थ करो, करते भी हैं हम, पर बाबा प्यार से कहते हैं, हमें चलाते हैं, इसलिए हम थोड़ा नाज नखरे से भी चलते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, है ना, अलबेले हो जाते हैं। पर ड्रामा के आगे तो किसी की चली नहीं। घर में चार दिन नहीं रहने वाले हमारे भाई व्यापारी नौकरी वाले कंपलसरी रहे ना घर में। तो टाइम ही टाइम पर योग ना लगे। हाँ, और अब फुर्सत ही फुर्सत पर योग ना हो, एकाग्र ना हो पाए। कभी हम बोर ना हो जाए, मूड ऑफ ना हो जाए। इतना टाइम मिला उसमें हमें क्या करना है। तो जिसको अपनी स्व उन्नति में रुचि, मुरली की पढ़ाई में रुचि, बाबा की याद की रुचि, उनके तो समय सफल हो। एक ने लिखा था कि बाहर नहीं जाना है ना, भीतर तो जा सकते हैं ना। पर वो भीतर जाने का अभ्यास हो तो जावे ना। अंतर्मुखी रहने का, स्वदर्शन करने का, बाबा से बात करने का, तो हमारा वो समय सफल हो गया। अक्सर हम कहते फुर्सत ही नहीं मिलती, मुरली पढ़ने का बहुत ये है, अध्ययन करने का, पर टाइम ही नहीं है। तो ड्रामा ने कंपलसरी ऐसी परिस्थिति लाई, मीन्स जबरदस्ती भी बाबा हमें संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जबरदस्ती भी बाबा ने ये पुरुषार्थ का टाइम दिया, ताकि हम बच्चे ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं मिला था। हमारी सेंटर की बहनें भी सेवा में, ईश्वरीय परिवार के सेलिब्रेशंस में, कारोबार में, इधर जाना उधर जाना, इतने भाई बहने, उनको भी नहीं था, तो सबको टाइम मिल गया। अब कोई बाबा को नहीं कह सकता कि हमें टाइम नहीं मिला। हमें इससे जागना है। अब कभी भी हमें यह नहीं कहना है कि हमें टाइम नहीं, हमें खुद को टाइम देना ही है। तो अगर हमें जिगरी इस टाइम को सफल किया, तो आगे के लिए आपको अब एक कला आ गई कि अकेले हो तो भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। बहुत घर में काफी लोग हैं, उसमें भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्थिति की बात है। अब जो बाबा कहते हैं उसमें कोई ज्यादा समय देने की बात नहीं है। सत्य तो मिल चुका है, ज्ञान तो मिल चुका है ना। अब है उस अनुसार मन वचन कर्म रख। बाबा ने लाइफस्टाइल बता दी कि ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा को हर परिस्थिति में कैसे जीना, कैसे स्थिति रहे, वो हम सबको बाबा ने सिखा दिया। तो कोई डर नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, हम है ही बाबा की याद में, हम है ही श्रीमत पर। हमारा मन वचन कर्म, हमारा तन मन धन, जो भी एक्स्ट्रा है वो बाबा के लिए है, सेवा के लिए है, पुरुषार्थ के लिए। तो हम बोर होंगे ही नहीं कि क्या करें, फालतू बैठ के क्या करें, पर हम तो फालतू बैठे ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे ही बैठे हो तो भी सदा ऊंची स्थिति में बैठ, साधारण स्थिति में नहीं। मान लो कई बार हम फ्री होके बैठते हैं, तो अंदर अंदर बुद्धि इधर उधर, क्या करना है क्या करना है, कोई आवे बात करे, नहीं। ऐसे ही बैठे हैं तो भी ऊंची अवस्था में बैठ। समय सफल, श्वास सफल, संकल्प सफल। तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को ठीक रख सके। बाबा के बच्चों के मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि मैं तो डिस्टर्ब हो गए। अरे हम क्यों डिस्टर्ब होंगे? इतना जो पुरुषार्थ करके अवस्था बनाई, वो छोटी सी बात में डिस्टर्ब करनी। यहां एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, एक डॉक्टर उसमें आए थे, मैंने प्रैक्टिकल देखा, उसकी घड़ी गुम हो गई। जो मेहमान ठहरे थे उस बिल्डिंग में वो ठहरे थे और उनकी घड़ी गुम हो गई। अब यहां कोई चोरी करने वाले तो है नहीं, कोई लेबर भी ऐसे नहीं। अब मेहमान जो आए उसमें से ही किसी ने चोरी की। फिर जब वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि मेरी शादी पर मेरे ससुर ने मुझे दी थी, और इतना डिस्टर्ब, दादी ने उससे भी अच्छी, बहुत अच्छी घड़ी दादी ने उनको दी, तो भी डिस्टर्ब। तो मुझे हुआ कि एक घड़ी के पीछे इतना बड़ा डॉक्टर, ऐसी अवस्था हो जाती है। यहां तो हम ड्रामा, चलो भाई, हम अपना प्रयास करते हैं कि चीज ढूंढे, हमारी खोए नहीं, वो सावधानी रखे, पर अवस्था बिगाड़ के क्या होना है ना? जो गया वो गया। तो बाबा का ज्ञान हमें ये सिखाता है। बाबा कहता है ना कि श्वास जाए पर खुशी न जाए, फिर वो बीमारी की परिस्थिति हो कि कोई आर्थिक नुकसान। देखो कितनों के नौकरी धंधे भी चले गए ना, पर हिम्मत रखेंगे तो अपने आप वापस आता ही है ना। जैसे कहीं कहते हैं ना कि सुनामी हुए, अर्थक्वेक हुए, है ना, ऐसे बड़े बड़े जो डिजास्टर आते हैं, तो उस समय कैसा सब कुछ बह जाता है, टूट के धरती में दब जाता है। तो उस समय कई कहते हैं कि भाई बाबा तो सिर्फ ज्ञान देते हैं, थोड़ा कुछ धन भी दे दे, कुछ साधन भी दे दे, जमीन दे दे। परंतु उस समय आप देखो, ज्ञान ही मदद करता है, तब आप हिम्मत रख पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं और फिर से उठ जाते हैं, उग जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल जो समझ बाबा देता है, दिव्य बुद्धि बाबा देता है, जो और कोई नहीं देख सकता है, हम जीरो होकर के वापस उस समय हीरो बन जाते बाबा के ज्ञान की समझ से। इसलिए दिव्य बुद्धि से अपने आप को संपन्न करना, ज्ञान से जो सबक हम सीखते हैं वो है दिव्य बुद्धि। वो दिव्य बुद्धि सदा रहे हमारे, तो हम अपने आप को कैसी भी परिस्थिति से जगा सकते हैं। हम माउंट आबू ऊपर आते हैं, सब आप भी आते हैं, तो पहाड़ों के बीच कैसे वो वृक्ष उग के निकल आता है, इतने कड़े पहाड़ के बीच भी कैसी कैसी स्थिति में उग के बाहर आते हैं। एक प्रकृति में भी ये शक्ति है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो उग के बाहर आते। कई बार हम देखते हैं वृक्षों पर, डाली डाली पर बंदर बैठे, और जो उनके कोमल पत्ते उगते हैं ना, जब पतझड़ के बाद फिर उगते हैं वृक्ष, तो हम देखते हैं कि हर डाली पर बंदर खाने के लिए कोमल पत्ते बैठे हैं, फिर भी आखिर वो वृक्ष पूरा पत्तों से भर जाता है, उग जाता है, भले डाली डाली पर खाने वाले बंदर बैठे। तो एक प्रकृति में भी शक्ति है, तो हमारे में ना हो हा? कुछ भी बातें आए, भले हमें परिस्थिति आवे, ऐसे कर्म नहीं करने हैं, कहीं खुद ही मुसीबत को लाते हैं, उनका स्वभाव ऐसा, चलना ऐसा कि किसी ना किसी से टकराते ही रहते हैं। जैसे स्थूल रीति से भी आप देखो, कईयों का चलना ऐसा होता है कहीं ना कहीं टकराते ही रहते हैं, गिराते ही रहते हैं, चीजें टूटफूट होती ही रहती। भाई सावधानी से चलो। इसलिए हमें जानबूझ के परिस्थितियां, बीमारियां नहीं लानी, पर हिसाब किताब से आई है तो डरना भी नहीं है, हिम्मत से इसको पार करना है। कर सकते हैं ना? हाँ। तो चलो बाबा की याद में बैठेंगे थोड़ा, सब खड़े हो जाओ, कब से बैठे हैं ना। हाँ, अपने हाथ पांव स्ट्रेच करो, खींचो ऊपर, ऊपर खींचो, छत को हाथ लगाओ। तीन बार, तीसरा करो। पांव भी स्ट्रेच करो, हाथ भी ऐसे खींचो, पांव भी ऐसे। हाँ, कमर ठीक करो, ऐसे ऐसे। गर्दन ठीक करो। अब हल्के हल्के जंप लगाओ, हल्के हल्के, शरीर देख के लगाना। हाँ। देखो सब कठपुतली बन गए। खड़े खड़े अपने ही स्थान पर दौड़ो, अब दो दो की जोड़ी बन जाओ और आमने सामने खड़े हो जाओ। भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ, हैंडशेक करिए, नमस्ते करिए एक दो को। सब देवी देवताएं हैं, सलाम मालेकम करिए। ओम शांति कहिए, ऐसे नहीं, अपने पार्टनर को कहिए ओम शांति। मुस्कराइए एक दो के सामने। आज जो भी क्लासेस हुए, कौन सी पॉइंट बहुत अच्छी आपको लगी, वो एकदम धीमे से कान में बताइए एक दो को। पहले याद करिए, आज जो भी क्लास चले कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, कान में बात करिए। दोनों ने बताया एक दो को। चलो बाबा के सामने हो जाइए। तीन अभ्यास खड़े होकर करेंगे, जिनको तकलीफ हो जब चाहे वो बैठ जाए। लाल लाइट करें। पहला अभ्यास, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। जैसी मैं आत्मा वैसा मेरा शरीर। मैं आत्मा शुद्ध सोना हूं, तो शरीर गहना भी सोने जैसा। कंचन काया है, मुझे आत्मा में खाद पड़ती है तो शरीर भी तमो प्रधान बनता है। मैं आत्मा योगी हूं तो शरीर भी निरोगी है। मैं भोगी बनती हूं तो शरीर भी रोगी बनता है। मैं आत्मा, मुझे बाबा क्योर कर रहा है। अब शरीर रोगी है, मैं आत्मा रोगी नहीं हूं। राइट साइड घूम जाए। बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है। ज्ञान योग से मुझ आत्मा को पवित्र निर्विकारी बनाते हैं। ज्ञान योग की रोज मलम पट्टी करते हैं। शरीर रूपी स्ट्रेचर पर मैं आत्मा बैठकर रोज बाबा की रूहानी हॉस्पिटल में उपचार कराने में आती हूँ। मैं विकारों की बीमारी से मुक्त होती जाती हूँ। अब बाबा के साथ मैं आत्मा भी नायब सर्जन बनती जा रही। बाबा की याद ही पावन बनने का एकमात्र इलाज है। सबको सिखा रहे बाबा के सामने हो जाइए। मैं स्व में स्थित बाबा की याद में मस्त स्वस्थ आत्मा। लेफ्ट साइड घूम जाइए। मैं स्वस्थ खुश नसीब भाग्यशाली मुझे पूर्ण पावन बनना है। सतु प्रधान बनना है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना। बाबा के सामने हो जाएगी। मुझे अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। लौकिक अलौकिक परिवार में सबके साथ मिलकर रहना, संतुष्ट रहना, श्रीमत अनुसार रहना है, लौकिक परिवार में अलौकिक परिवार में स्नेही सहयोगी बनना है। बैठ जाए। चौथा अभ्यास, स्वयं का इस ड्रामा में जो मेरा पार्ट है इस अंतिम जन्म में जो मेरा रोल है श्रेष्ठ रीति से प्ले करना है। मैं निमित्त ट्रस्टी हूं, मालिक बाबा है। बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करणहार। अन्य सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, शुभ भावनाओं का सहयोग देना है। मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद कर सकूं। मैं इस दुनिया में इस संसार में इसलिए हूं कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। मैं शरीर से यहां हूं, मन बुद्धि से असली घर में हूं। मैं जानती हूं बाबा आए हैं ले जाने के लिए। मैं मन की आंख से असली घर को देखती हूं। ये समय है बैक टू सेल्फ, वापस स्वयं प्रति केंद्रित हो जाने का। देहभान के कारण दुनिया के विस्तार में चले गए, अब वापस स्वयं में फोकस हो जाना है, स्वयं के प्रति केंद्रित होने का। ये समय है बैक टू होम, वापस घर जाने का। निज धाम में स्वयं के निज गुणों में स्थित हो जाने का। ये समय है बैक टू सोर्स, बाबा की तरफ जाने का। बाबा से सर्व संबंध, बाबा से सर्व प्राप्तियां, बाबा मेरा सर्वस्व है।
अवश्य ही पूरा डेढ़ घंटा दीदी के सानिध्य में बैठकर अच्छा अनुभव भी किया होगा और ज्ञान रतन भी जमा किए होंगे। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।